आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। पार्लियामेंट ने वक्फ तरमीमी बिल 2025 को मंजूरी दी है, जिसका मकसद वक्फ इमलाक के बंदोबस्त को मजबूत करना है। पार्लियामेंट ने मणिपुर में सदराज के निफास की तायद करते हुए आईनी करारदाद को मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज थाईलैंड के शहर बैंकॉक में बिम्स्टेक की छठी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बड़े नए महसूलात के ऐलान के बाद आलमी शेयर बाजारों में गिरावट देखने में आई। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट ने वक्फ तरमीमी बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने रात देर गए इसे मंजूर कर लिया। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ऐलान किया कि मजकूरा बिल मंजूर कर लिया गया है। 128 अरकान ने इसके हक में वोट दिया, जबकि 95 अरकान ने बिल की मुखालफत की।
आईज 128, नोज 95, अब्स्टेंशन 0, बिल इज पास्ड।
राज्यसभा में मस्कूरा बिल पर बहस तकरीबन 12 घंटे तक चली। लोकसभा बिल को पहले ही मंजूर कर चुकी है। वक्फ तरमीमी बिल 2025 का मकसद वक्फ इमलाक के बंदोबस्त को मजबूत करना है। साथ ही इसमें विरासत के मकामात के तहफ्फुज और समाजी बहबूद को फरोग देने की भी दफात शामिल हैं। मस्कूरा बिल का मकसद इमलाक के इंतजाम में शफाफियत बढ़ाकर बंदोबस्त को बेहतर बनाना, वक्फ बोर्ड्स और मकामी हुकाम के दरमियान तालमेल को मुस्तहकम करना और मुतालिका अफराद के हकूक को तहफ्फुज फराहम करना भी है। बिल पर बहस का जवाब देते हुए अकलतों के उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि इस बिल से करोड़ों गरीब मुसलमानों को फायदा होगा और एक भी मुसलमान को इससे किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मस्कूरा बिल वक्फ इमलाक में दखलंदाजी नहीं करता। वजीर मसूफ ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के नजरिए के साथ काम करती है और वो किसी भी तबके के साथ भेदभाव नहीं करती।
भारत का जो सरकार है, किसी को धर्म के आधार पर तो आप अपना काम नहीं कर सकते। सबको भारतीय नागरिक होने के नाते सबको एक दृष्टिकोण से हमको दिखना होता है, सबको बराबर दिखना होता है। जब मोदी जी ने कह दिया कि सबका साथ सबका विकास, वही तो संविधान का स्पिरिट है।
इससे पहले बिल पेश करते हुए अकलतों के उमूर के वजीर ने कहा कि मुतालिका फरीकों के साथ साथ मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में भी तफसीली सलाह मशवरे के बाद यह बिल लाया गया है। उन्होंने अपोजिशन पार्टियों पर जोर दिया कि वो बिल की हिमायत करें। इधर अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल की मुखालफत की और सरकार से इसे वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बिल में खामियां हैं और ये आईनी जाब्तों के मुनाफी भी है
और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन को सबको आजादी दी है, इसके बावजूद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, दान दिए सो रख ले नहीं सकते, ये चीजें करना ये समाज के लिए ठीक नहीं।
जेडीएस के सरबराह एचडी देवगौड़ा ने मस्कूरा बिल लाने पर नरेंद्र मोदी सरकार को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि वक्फ इमलाक का उन लोगों ने बेजा इस्तेमाल किया है जो अमीर हैं या बिरादरी में उनका ज्यादा असर रसूख है। पार्लियामेंट ने मनसूख करने से मुतालिक मुसलमान वक्फ बिल 2025 को भी मंजूरी दी है, जो मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 को मनसूख करता है। राज्यसभा ने इसे मंजूर कर लिया, जबकि लोकसभा इसे पहले ही मंजूर कर चुकी है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर मम्लकत भागीरथ चौधरी ने वक्फ तरमीमी बिल को तारीखी करार दिया है और कहा कि मुसलमानों को मस्कूरा बिल से बहुत फायदा होगा।
आज राज्यसभा में पारित हुआ है, वक्फ बोर्ड का ये बहुत ऐतिहासिक है। मुस्लिम समाज जो वास्तव में महिला है, गरीब है, जो पिछड़े हुए हैं, उनका इसमें कल्याण होगा।
पार्लियामेंट ने मणिपुर में सदराज नाफिज करने से मुतालिक एक आईनी करारदाद मंजूर की है, जिसे रात देर गए राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। ये आईनी करारदाद मणिपुर के मामले में आईन की दफा 356(1) के तहत इस साल 13 फरवरी को सदर जमहूरिया के ऐलान से मुतालिक है। लोकसभा इसे पहले ही मंजूर कर चुकी है। قرارداد پر بحث کا جواب دیتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ گزشتہ برس نومبر کے بعد سے منی پور سے تشدد کی کوئی خبر نہیں ہے۔ انہوں نے اپوزیشن کے اس الزام کو بھی مسترد کر دیا کہ صورتحال سے نمٹنے میں ناکامی کے سبب ریاست میں صدراج نافذ کیا گیا تھا۔
جب کسی نے بھی سرکار کے گٹھن کا دعویٰ نہیں کیا، اس لیے شونیاوکاش کی اوستھا میں راشٹرپتی شاسن ڈالنے کا نرنے کیا۔ اس طرح سے کہنا کہ راشٹرپتی شاسن اس لیے ڈالا گیا کہ سمسیا سنبھلتی نہیں، راشٹرپتی شاسن 13 فروری کو ڈالا گیا، نومبر میں 0 ہنسا، دسمبر میں 0 ہنسا، جنوری میں 0 ہنسا، مارچ 13 تک بھی 0 ہنسا، اور اس کے بعد سے آج تک بھی 0 ہنسا۔
اس سے قبل قرارداد پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے اپوزیشن کے رہنما ملک ارجن کھڑگے نے حکومت پر منی پور میں تشدد پر قابو پانے میں ناکامی کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ منی پور کے معاملے میں کوئی حکمت عملی اور طویل مدتی پالیسی نہیں ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی آج تھائی لینڈ کے شہر بینکاک میں بمسٹیک کی 6ویں سربراہ کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں۔ سربراہ کانفرنس کا موضوع ہے خوشحال، مضبوط اور کھلا بمسٹیک۔ اس میں بینکاک ویژن 2030 منظور کیا جائے گا اور بمسٹیک کا مستقبل کا خاکہ طے کرنے کے لیے بمسٹیک کے ممتاز افراد کے گروپ کی رپورٹ کی تائید بھی کی جائے گی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
بمسٹیک کے تحت خلیج بنگال کے اطراف واقع 7 ملکوں بنگلہ دیش، بھوٹان، بھارت، میانمار، نیپال، سری لنکا اور تھائی لینڈ کے لیڈر یکجا ہوئے ہیں۔ خلیج بنگال بحر ہند کے خطے کے وسط میں واقع ہے۔ بمسٹیک ایسی واحد علاقائی تنظیم ہے جو جنوبی ایشیا کے 5 ملکوں اور جنوب مشرقی ایشیا کے 2 ملکوں کو یکجا کرتی ہے۔ بمسٹیک سے عالمی آبادی، جی ڈی پی اور غیر ملکی تجارت کے بڑے حصے کی نمائندگی ہوتی ہے۔ بھارت بمسٹیک کے 4 بانی ممبر ملکوں میں سے ایک ہے۔ بمسٹیک کے دیگر ممبر ملکوں کے ساتھ بھارت کے قریبی باہمی تعلقات کے تناظر میں بھارت علاقائی اشتراک کو مستحکم بنانے میں سرکردہ رول ادا کرتا رہا ہے۔ بمسٹیک سے بھارت کی خارجہ پالیسی کی 3 اہم نکات کی عکاسی ہوتی ہے، جس میں پڑوسی مقدم کی پالیسی، مشرقی ملکوں سے رابطہ بڑھانے کی پالیسی اور ساگر شامل ہے۔ سپرنا سیکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں نرگس سلیم۔
وزیراعظم نریندر مودی بینکاک میں میانمار کے سینئر جنرل من آنگ ہلانگ کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کر رہے ہیں۔ جناب مودی کل تھائی لینڈ کے 2 دن کے دورے پر بینکاک پہنچے ہیں۔ انہوں نے تھائی لینڈ کی اپنی ہم منصب پی شنواترا کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی اشتراک کے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لیا اور سیاسی تبادلوں، دفاعی اور سیکورٹی ساجیداری، کلیدی رابطوں، تجارت، سرمایہ کاری اور عوام سے عوام کے رابطوں کو مزید مستحکم بنانے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں لیڈروں نے کنیکٹیویٹی کو وسعت دینے، صحت، سائنس اور ٹیکنالوجی، اسٹارٹ اپس، ڈیجیٹل، تعلیم، ثقافت اور سیاحتی اشتراک کو بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ باہمی بات چیت کے بعد ایک مشترکہ بیان میں جناب مودی نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے بھارت اور تھائی لینڈ کی سیکورٹی ایجنسیوں کے درمیان کلیدی مذاکرات کے سلسلے میں بھی بات چیت کی۔
بھارت کی ایکٹ ایسٹ پالیسی اور ہمارے انڈو پیسیفک ویژن میں تھائی لینڈ کا وشیش استھان ہے۔ آج ہم نے اپنے سمبندھوں کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا روپ دینے کا نرنے لیا ہے۔ سرکشا ایجنسیوں کے بیچ اسٹریٹجک ڈائلگ ستھاپت کرنے پر بھی چرچا کی۔ سائبر کرائم کے شکار بھارتیوں کو واپس بھارت بھیجنے میں تھائی لینڈ سرکار سے ملے سہیوگ کے لیے ہم نے تھائی لینڈ سرکار کا آبھار پرکٹ کیا۔
وزیراعظم نریندر مودی نے بینکاک میں تھائی لینڈ کے سابق وزیراعظم تھاکشن شنواترا سے بھی ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے ان کے ساتھ اپنی میٹنگ کو پر مسرت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب شنواترا بھارت کے ایک عظیم دوست ہیں اور اٹل جی کے ساتھ ان کے بہت پرتپاک تعلقات تھے۔ جناب مودی نے بتایا کہ انہوں نے جناب شنواترا کے ساتھ بھارت تھائی لینڈ اشتراک پر تفصیل سے بات چیت کی۔ بمسٹیک سربراہ کانفرنس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی 2 ملکوں کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں آج سری لنکا جائیں گے۔ 3 دن کے سرکاری دورے کے دوران جناب مودی وہاں کے صدر انورا کمارا دست نائکا کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کریں گے۔ وزیراعظم کی حیثیت سے جناب مودی کا سری لنکا کا یہ 4تھا دورہ ہوگا۔ سرکردہ اداکار اور ہدایتکار منوج کمار کا آج صبح ممبئی میں انتقال ہو گیا۔ وہ 87 برس کے تھے۔ بالی ووڈ کے معروف اداکار کو ان کی حب الوطنی کی فلموں کے لیے بھارت کمار کے نام سے جانا جاتا تھا۔
اے پریت جہاں کی ریت صدا، میں گیت وہاں کے گاتا ہوں، भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा।
दहाइयों तक भारतीय सिनेमा को उनके बेशबहा ताबुन के लिए उन्हें पद्मश्री और दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया गया था। 1967 में आई फिल्म उपकार, 1970 में पूरब और पश्चिम और 1981 में क्रांति उनकी क्लासिकी फिल्मों में शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नए महसूलात के ऐलानात के बाद जिसके सबब कीमतें बढ़ने और अमरीका और बैरूनी ममालिक पर बोझ बढ़ने की पेशगोई की जा रही है, आलमी हिसस बाजार में गिरावट आई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी है कि अमरीकी बाजार को 27 खरब डॉलर का नुकसान हुआ है। अमरीका की बड़ी कंपनियों पर मुश्तमिल S&P 500 में 4.8% की गिरावट आई, जो 2020 में कोविड के सबब मईशत के मुतासर होने के बाद से सबसे खराब दिन रहा। इससे कबल दिन में एशिया से लेकर यूरोप तक बाजारों में गिरावट आई। डाउ जोन्स तकरीबन 4% की कमी के साथ बंद हुआ, जबकि नैसडैक में अंदाजन 6% की कमी आई। तेल की कीमत फी बैरल 2 अमरीकी डॉलर से ज्यादा गिर गई। बिहार में आज सुबह उगते सूरज को प्रातकालीन अर्घ्य देने के साथ ही 4 रोजा चैती चैट पूजा अख्तताम पजीर हो गई। अकीदतमंदों ने रियासत भर में दरियाओं के किनारे मुख्तलिफ छठ घाटों पर सूर्य भगवान और चैती मैया की पूजा अर्चना की। लाखों अकीदतमंद दरियाए गंगा, गंदक, कोसी और दीगर अहम दरियाओं के घाटों पर पूजा अर्चना के लिए जमा हुए। अक्वाए मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरस ने म्यांमा में खूनरेज खाना जंगी को खत्म करने की खातिर अलमनाक सानहे को एक मौके के तौर पर इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। जलजले से तबाहाल मुल्क के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर मदद की अपील करते हुए उन्होंने इस बहरान में हुई बड़े पैमाने पर तबाही की खातिर आलमी बिरादरी से फौरी तौर पर माली इमदाद तेज करने को कहा। अक़वाए मुत्तहदा में उन्होंने नामानिगारों से कहा कि हुकूमत और म्यांमा के अवाम दुख की इस घड़ी में एक साथ हैं, लिहाजा उन्हें खाना जंगी को खत्म करने के लिए एक सियासी हल की खातिर भी मुत्तहिद होना चाहिए। आईपीएल T20 क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रन से हरा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को जीत के लिए 201 रन का निशाना दिया था, लेकिन उसकी पूरी टीम 16 ओवर्स और 4 गेंदों में 120 रन बनाकर आउट हो गई। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए हेनरिक क्लासन ने सबसे ज्यादा 33 रन बनाए। कोलकाता के लिए वैभव अरोड़ा ने 3 विकेट हासिल किए। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आज लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बैंकॉक दौरे से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार मिलाप की शह सुर्खी है, वजीर आजम बिम्स्टेक चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचे, शानदार इस्तकबाल। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा लिखता है कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हवाले से है थाईलैंड का अहम किरदार, कई माहदों पर किए गए दस्तखत। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने अकलियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि वक्फ बिल करोड़ों मुसलमानों की जिंदगियों को बेहतर बनाएगा। अखबारात ने नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के हवाले से सुर्खी लगाई है कि राज्यसभा के तकद्दस की हिफाजत के लिए पुरअज़्म रहें। राष्ट्रीय सहारा ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को कौमी सफे पर जगह दी है कि फौज को तवील मुद्दती और कलील मुद्दती चैलेंजों के हल की मनसूबाबंदी करनी चाहिए।
आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने वक्फ तरमीम बिल 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद वक्फ इमलाक के बंदोबस्त को मरबूत करना है। पार्लियामेंट ने मणिपुर में सदराज के निफाज की तायद करते हुए आईनी करारदाद को मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज थाईलैंड के शहर बैंकॉक में बिम्स्टेक की 6वीं सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बड़े नए महसूलात के ऐलान के बाद आलमी शेयर बाजारों में गिरावट देखने में आई है। और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रन से हरा दिया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।